मित्रों, कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय लोगों के ही नहीं समाज और व्यवस्था की दिशा भी मोड़ देता है। इस बात को भारतीय समाज और व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये पूरी तरह से सटीक है। एक खोज भारत की श्रृंखला की इस कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे सूरमा की जिन्होंने भारत माता को स्वतंत्र देखने के लिए एक ऐसी चिंगारी जलाई जो उनकी शहादत के 90 साल बाद तक प्रज्वलित रही, जब तक देश आजाद नहीं हुआ 1947 में। इस श्रृंखला को भारत के एक जाने माने पत्रकार दंपति शिवनाथ झा और नीना झा अपनी कड़ी मशक्कत से आप सभी भारतीयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के लोगों में उन शहीदों के प्रति, उनके जीवित वंशजों के प्रति धूमिल पड़ती हुई याददाश्त फिर से ताजा हो सके। जी हाँ, मैं हूँ कुमुद मिरानी और बात कर रही हूँ शहीद मंगल पांडे की। मंगल पांडे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रखी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस नायक की जिसकी वीरता और साहस स्कूल में ही इतिहास पढ़ते हुए हरदम मेरे मनोमस्तिष्क पर छाया रहता था और मैं कल्पना किया करती थी कि मंगल पांडे की सूरत कैसी होगी, उनकी छवि कैसी होगी। उन दिनों में तो कोई तस्वीर हमारी बुक में नहीं थी, इतिहास की किताब में नहीं थी, और बताया जाता है कि मंगल पांडे की एकमात्र ही तस्वीर है जो आप हमारे फेसबुक पर देख सकेंगे। जरूर जाइए फेसबुक पर और मंगल पांडे की असली तस्वीर भी देखिए। अच्छा, आज हम आपको मिलवाएंगे और सुनवाएंगे मंगल पांडे जी के एकमात्र जीवित पांचवी पीढ़ी के वंशज श्री रघुनाथ पांडे की कुछ टिप्पणियां और उनकी व्यथा। क्यों भूल रहे हैं हम भारत के शहीदों को? बच्चों से अगर आज पूछें कि मंगल पांडे कौन था तो वो कहेंगे आमिर खान है। आइए मंगल पांडे की कुछ बातें करें। उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में पिता सुदिष्ट पांडेय के घर में हुआ था और उनके पिताजी एक सामान्य ब्राह्मण थे। एक खेतिहर ब्राह्मण होने के बावजूद मंगल पांडे के पिता की ये बहुत ही इच्छा थी कि उनका बेटा दो पैसे कमाए जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। मगर उनको क्या पता था कि उनकी ये सोच और उनकी संतान का भाग्य एक ऐसी दिशा की ओर जाने को तत्पर है जो भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया। मंगल पांडे ने उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत की सैन्य सेवा में नौकरी पकड़ ली और बन गए नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही बंगाल के बैरकपुर में। अच्छा, उन दिनों कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदुस्तानी आवाम पर ढाए जा रहे जुल्म, ईसाई पादरियों द्वारा धर्मांतर के लिए बढ़ते दबाव ने जनता के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नफरत और बगावत पैदा कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत और राज हड़प नीति से, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, भारतीय जागीरदार और राज रजवाड़े पहले ही बहुत ही दुखी थे, लेकिन लोग खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहे थे। सेना की बंगाल इकाई में जब एनफील्ड P.53 राइफल में नई किस्म के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया तो हिंदू मुस्लिम सैनिकों के मन में गोरों के विरुद्ध बगावत के बीज अंकुरित होने लगे, क्योंकि बताया जाता है कि उन कार्ट्रिजेस पर गऊ और सुअर की चर्बी का एक कवर, एक पोश हुआ करता था जिसको कि सिपाही को मुंह से तोड़कर और फिर गोली चलानी पड़ती थी। अच्छा, बात दरअसल बैरकपुर छावनी के सफाई करने वाले राम टहल से जुड़े हुए एक वाकये की है। राम टहल ने सिपाही मंगल पांडे से 22 जनवरी 1857 की सुबह पीने के लिए उनका पानी का लोटा मांगा। अच्छा, उस समय जातीय भेदभाव पूरी चरम सीमा पर था। फौज में भी भेदभाव रहता था, जहां ऊंची जाति को पीतल का लोटा और निम्न जाति वालों को मिट्टी का बर्तन दिया जाता था। राम चहल के आग्रह पर मंगल पांडे ने जब लोटा देने से इनकार कर दिया तो वो बोला, पंडित जी, मेरे लोटा छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों की गाय और सुअर चर्बी से बनी कारतूस की टोपी मुंह से खींचने से आपका धर्म क्या बचा रहेगा? राम चहल की बात ने मंगल पांडे को विद्रोही बना दिया। उन्होंने राम चहल की इस बात को पूरी फौजी पलटन को बताया। फिर क्या था, देखते ही देखते बैरकपुर छावनी में बगावत की आग सुलग गई। अंग्रेज अफसरों को इसकी भनक लग गई। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल चलने वाली सेना को यानी इन्फेंट्री को बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। जानकारी मिली कि फिरंगी नई पलटन बुलाकर जल्द ही देशी सिपाहियों को इस दुस्साहस का दंड देंगे। मंगल पांडे को ये नागवार गुजरा और रविवार 29 मार्च 1857 के दिन परेड ग्राउंड में ही मंगल ने अपने साथी भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए ललकारा। इस पर सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिए, लेकिन कोई भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा। और फिर मंगल पांडे ने गिरफ्तारी के इस आदेश का विरोध करने के लिए सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। इस घटना की खबर सुन के वहां आए लेफ्टिनेंट बॉब भी मंगल के अदम्य साहस और वीरता के सामने कुछ नहीं कर सके। मंगल पांडे की बंदूक फिर चली, घोड़े सहित बॉब जमीन पर गिर गए और इस तरह कई अधिकारी मंगल पांडे की गिरफ्तारी के लिए आगे आए, लेकिन मंगल पांडे किसी के हाथ नहीं लगे। अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगल पांडे ने अपनी बंदूक को सीने से लगाया और पैर से चलाकर ट्रिगर उसने बंदूक दाग दी, मगर उनकी जान बच गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां वो कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो गए। फौजी अदालत ने मंगल को फांसी की सजा सुनाई। बैरकपुर के परेड मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच 8 अप्रैल 1857 को प्रातःकाल 5:30 बजे उन्हें फांसी पर लटकाया गया और फिर उनके बाद 21 अप्रैल को उनके सहयोगी ईश्वर प्रसाद को भी फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता संघर्ष 8 अप्रैल 1857 को उनकी शहादत के साथ समाप्त नहीं हुआ। ये विराट संघर्ष क्रांति की राह पर निरंतर आगे बढ़ता गया। एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। ये विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इन लोगों की जांबाजी ने पूरे देश में उथल पुथल मचाकर रख दी, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि भारत में राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहे थे। हालांकि बाद में अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति रूपी बीज 90 साल बाद आजादी के वट वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। ब्रिटिश शासन को हिला देने वाले एकमात्र सैनिक मंगल पांडे। तो देख रहे हैं कि मंगल पांडे के विद्रोह के साथ और उनकी मौत के साथ खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये आग और धधक उठी। लाखों मंगल पांडे पैदा हो गए, यहाँ तक कि अंग्रेज सेना में किसी भी रोष प्रकट करने वाले या विद्रोह का भाव दिखाने वाले भारतीय सैनिक को कहते थे इज ही अ पांडे। वो पांडे को उन लोग पांडे कहते थे। मंगल पांडे भारत के लिए देशभक्ति के प्रतीक रहे, तो अंग्रेज हुकूमत के लिए विद्रोह की वो मिसाल बन गए थे। उन्होंने जो विद्रोह शुरू किया था उसमें धीमे धीमे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, खान बहादुर, कई बड़े बड़े लोग जुड़ते गए और अपनी जानें उन्होंने गंवाई। अंग्रेज शासन की नींव हिला दी थी मंगल पांडे ने। आज हम सभी भारतीय, चाहे भारत में हों या भारत की सरहद से पार, क्या उन क्रांतिकारियों और शहीदों या उनके वंशजों को जानते हैं, पहचानते हैं? क्या उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त है? हाँ, इतना जरूर है कि 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया और उनके जीवन पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे कि आमिर खान की द राइजिंग मंगल पांडे, ड्रामा किया गया। द रोटी रिबेलियन पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके में बैरकपुर नगर में, जिस जगह पर मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया था और बाद में जहां उन्हें भी फांसी दी गई थी, उस स्थल पर शहीद मंगल पांडे उद्यान जरूर बन गया है। लेकिन आइए अब सुनते हैं मंगल पांडे के परिवार के पांचवी पीढ़ी के एकमात्र जीवित वंशज श्री रघुनाथ पांडे की ये टिप्पणियां।
There would have been an almost 270,000 strong boost without migration, going up only slightly more with the five-year influx. But the big growth in migrant employment numbers has come with an increased risk of workplace exploitation. According to one of Australia's peak union bodies, many foreign workers are being paid far below national standards. Unions New South Wales found 4 out of 5 jobs advertised in the ethnic media were paying at least $5 below the award rate.
This is just an example of rampant wage theft going on in this country. I don't think the Fair Work Ombudsman is funded enough or has the appropriate structures to deal with this problem and actually bring it under control.
But the workplace watchdog has announced a crackdown on exploitation in the restaurant industry, launching court action against one Melbourne operator after raids uncovered the alleged underpayment of staff as debate rages over the number of foreign workers in Australia. Population experts have a serious issue for those fearing they're taking our jobs.
Most of the long-term unemployed in Australia have low skills, and that's their problem. But it's not because of migration. And if anything, migration by leading to greater investment and so on is actually creating jobs for them.
Since 2011, employment in Australia has grown by 730,000 people. 600,000 of them were new migrants, and it's transformed the workplace.
The Australian labour force would have aged quite a lot without migration.
The study found without migration, the under 55's workforce would have slumped by more than 140,000. But new workers coming in from overseas, numbers climbed by 452,000. By contrast, among older workers, there would have been an almost 270,000 strong boost without migration, going up only slightly more with the five-year influx. But the big growth in migrant employment numbers has come with an increased risk of workplace exploitation. According to one of Australia's peak union bodies, many foreign workers are being paid far below national standards. Unions New South Wales found 4 out of 5 jobs advertised in the ethnic media were paying at least $5 below the award rate.
This is just an example of rampant wage theft going on in this country. I don't think the Fair Work Ombudsman is funded enough or has the appropriate structures to deal with this problem and actually bring it under control.
But the workplace watchdog has announced a crackdown on exploitation in the restaurant industry, launching court action against one Melbourne operator after raids uncovered the alleged underpayment of staff by more than $30,000 over a 2-week period. Gareth Borum, SBS World News.
मौलवी अहमद शाह खान बहादुर खान आदबीरों ने अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया और शहादत दी। दिल्ली के साथ लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, बलिया, इलाहाबाद, बरेली, पटना, आरा, फिरोजपुर, लुधियाना, अंबाला, कोटा, भरतपुर, हैदराबाद, गुंटूर, मैसूर, मद्रास, कालीकट, पूना, सतारा, अहमदनगर, नासिक के बीजापुर पर आंदोलन अत्यंत उग्र रूप पकड़ चुका था। 1857 के इस महासंघर्ष ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 4 महीने तक दिल्ली पर सेनानियों का कब्जा रहा। यद्यपि 1857 की यह महाक्रांति अनेक कारणों से अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई, फिर भी इसने पूरे भारत में एक राष्ट्रीय नवजागरण की चेतना पैदा की और आगे के स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। आज के परिवेश में शहीदों के बलिदान एवं परिजनों को की स्थिति की जानकारी लेने की सुध राजनेताओं को नहीं है और राष्ट्र उन शहीदों के बलिदान और त्याग को भूलता जा रहा है, जो अत्यंत शोचनीय और दुखद बात है। इसका कारण यह है कि आज की शिक्षा नीति के अंतर्गत इन शहीद के संक्षिप्त परिचय पर भी पुस्तकों में मैटर उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इन्हें भूलती जाएगी। देश की वर्तमान स्थिति में सभी क्रांतिकारी परिवार के परिजनों को एक सूत्र में बंधना होगा और देश को सामाजिक बुराइयों से दूर करने के लिए संघर्ष करना होगा और एक नई आजादी की आवाज उठानी पड़ेगी जिसे देश जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो।